आगे आयत नंबर 156, वक्तुब लना फी हासिहि दुनिया हसनतम व फिल आखिरा, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना अजाब तो मैं उसको दूंगा। अब जरा सा अल्लाह ताला का फैसला भी सुन लीजिए, क्या? और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब इसी पर वाकई करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है, तो वो रहमत इन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं। लिस्ट बना लीजिए अल्लाह की रहमतों को पाने वालों की खूबियां, जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसे ही हों। और इनके बाद फिर जो सबसे बड़ी खूबी जो हमारे थीम से मुतल्लिक आयत 157, अल्लज़ीन यत्तबिउन अर्रसूलन्नबीयल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबा, बहुत ही प्यारी आयत है। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। बस जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं, यह नूर से मुराद कुरान पाक है या वही इलाही शरीयत जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। ये हैं जी खसाइसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ादुल ख़ैर जो इस साल का था उसका एक दिन और मेरा गुमान है डे टू जो था वो पूरा हकूक रहमतुल्लिल आलमीन पे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बाकी अंबिया कराम से बहुत सारी चीज़ों में मुमताज़ किया, जिसमें अगर आप और मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें देखें तो इतने प्यारे नबी के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए। आपके सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है कि अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने जो खूबियाँ दी थी, आपने मैंने क्या करना है? फल्लज़ीना आमनू बिही, पहले ईमान लाना, अज़रूहू उनको कुव्वत देनी, व नसरू मदद करनी, और उस नूर यानी उस शरीयत को जो उनके जरिए आई उसको पूरी दुनिया में फैलाना है। और ये कब होगा? जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानने के बाद आपके करीब थे और करीब होंगे। आइए यहाँ आपको प्यारे नबी का एक वाक्य सुनाऊँ, अख़लाक़ नबी। क्योंकि जब लीडर अच्छा हो और उसका अख़लाक भी अच्छा हो तो फिर तो ज़्यादा हक रखता है ना कि उसकी बात मानी जाए, और प्यारे नबी सल्लम ऐसे ही थे। आज के वाक्य का टॉपिक क्या है? ये गुलामी तो है मगर है किसकी? सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुलामों में जिस शख्सियत ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो हजरत जैद बिन हारिसा थे। अरब का वो माशरा जिसमें गुलामों को नहायत हकारत की निगाह से देखा जाता था और इनको मामूली मामूली गलतियों पर इतनी सख्त सजाएं दी जाती थी कि इंसानियत कांप उठती, मगर अल्लाह के रसूल के आला अखलाक को देखिए, क्या आपके हुस्ने मामला ने गुलामों को जमाने भर का इमाम बना दिया। अरब का एक मशहूर कबीला बनू कल्ब है। ये कबीला अपनी शुजात और बहादुरी में बड़ा माना हुआ था। ये लोग सऊदी अरब के शिमाल में दुमतुल जुंदल के इलाके में रहते थे। हारिसा बिन शराहील की बीवी अपने 8 साल बेटे जैद के साथ मैके गई हुई थी। इनकी बस्ती पर बनु कैस बिन जुसरा के लोगों ने रात को हमला किया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, बस्ती का सामान लूटा, औरतों और बच्चों को लौंडियाँ और गुलाम बनाया और भाग गए। जिन बच्चों को गुलाम बनाया गया इनमें 8 साल जैद बिन हारिसा भी शामिल था। जैद, अब ये जुमला नोट कीजिएगा, बहुत सलीमुल फितरत थे। इस बारे का यही थीम है। ढूंढिए अपनी दोस्तों में, अपने बच्चों में, अपनी कजन्स में, अपने मिलने जुलने वालों में वो लोग जिनकी फितरत सलामत है, उन पे मेहनत कीजिए, बड़ी जल्दी आपको इंशाल्लाह नतायज दिखेंगे। तो जैद सलीमुल फितरत थे, गोरे चिट्टे थे, नहायत ही खूबसूरत और मुअद्दिब बच्चे थे। ताइफ के क़ुर्ब व जवार में हर साल ओकास का मेला लगता था जिसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक थी। लोग दूर दराज से मेले में शिरकत के लिए आते थे। ज़माने जाहिलियत में यहाँ एक बाजार गुलामों की खरीदो फरोख्त का भी होता था। जिसमें गुलामों को भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त किया जाता था, यानी जैसे आज मशीनें बिकती हैं ना, उस दौर में इंसान बिकते थे और इंसानों से फिर वो काम लेते थे मशीनों की तरह और उससे फिर पैसे कमाते थे। यानी एक किस्म की बिजनेस की एक फॉर्म थी उस दौर की गुलामी, और यही कुछ था उधर भी। उकास के मेले में जिन गुलामों को फरोख्त किया गया, इनमें जैद बिन हारिसा भी शामिल थे। मक्का मुकरमा से दीगर खरीदारों के अलावा हजरत खदीजा तुल कुबरा के भतीजे हकीम बिन खैजाम भी थे। उन्होंने जैद को देखा तो ये नौजवान पसंद आ गया, जैद को खरीदा और इसे मक्का मुकरमा ले आए। हकीम बिन हिजाम बड़े ही शरीफ तबा थे, अपनी फूफी खदीजा से नहायत मोहब्बत करते थे। एक दिन मक्का मुकरमा में अपनी फूफी से मिलने आए तो इनकी खिदमत में जैद को पेश किया कि ये आपकी खिदमत करेगा, यानी एक किस्म के तोहफे में दे दिया उनको गुलाम। अब जैद सैयदा के घर का गुलाम बनकर रहने लगा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, अल्लाह के रसूल ने जब हजरत खदीजा से शादी की तो आपने जैद को आपकी खिदमत के लिए मामूर कर दिया, यानी इनको तोहफे में मिला तो इन्होंने आगे से अल्लाह के नबी को ये हिबा कर दिए और कहा ये जैद अब आपका गुलाम है। जैद की खुशकिस्मती कि इसे अल्लाह के रसूल की गुलामी हासिल हो गई। ये गुलामी क्या थी? बस दोनों जहां की सआदत और खुशबख्ती थी। जैद अब रसूलुल्लाह की खिदमत करने लगे, उन्हें अल्लाह के रसूल के करीब होने का मौका मिला तो वह आपके अखलाक और किरदार से नहायत मुतासिर हुए। यहाँ अपने आप से सवाल कीजिए, मेरी मेड्स, खादमात या मेरे करीब रहने वाले लोग मेरे अखलाक के बारे में क्या गवाही देते हैं? मुंह पे तो शायद ना ही बोल सकें क्योंकि आपने उनकी बेइज्जती बड़ी करनी है, दिल में क्या कहते होंगे? इधर हारिसा बिन शराहील कल्बी अपने बेटे की वजह से सख्त परेशान था। उसकी वालदा अपने बेटे को याद करके हर वक्त रोती रहती थी। जैद को तलाश करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हारिसा ने चारों तरफ ऐलान करवा रखा था कि कोई शख्स इसे इसके बेटे के बारे में इत्तला देगा तो वो इसे मुंह मांगी कीमत देकर छुड़वा लाएगा। इसके जानने वाले कुंबे कबीले के लोग जहां भी जाते जैद के बारे में मालूम करते। एक मरतबा कुछ लोग उमरे या हज के लिए मक्का मुकरमा आए तो इन्हें जैद के बारे में मालूम हुआ कि वो मक्का मुकरमा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। उन्होंने जैद के वालिद हारिसा को इत्तला दी तो इसने भारी रकम साथ ली, अपने भाई को हमराह लिया और मक्का मुकरमा आ गया। ये नबूवत मिलने से पहले का वाक्य है। हारिसा अपने भाई के हमराह मक्का मुकरमा पहुंचा तो सीधा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने आते ही बता दिया कि वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया है और अपने साथ माकूल मुआवजा भी लाया है। दोनों भाई अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आप जितना भी मुआवजा तलब फरमाएं हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दें। जरा सा गौर कीजिए आगे क्या हुआ होगा। आपने इनसे फरमाया, मैं आप लोगों से कोई मुआवजा नहीं लूंगा, जैद मेरी तरफ से आजाद है, बस इससे पूछ लीजिए, अगर ये आपके साथ जाना चाहे तो इसे ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आजादी का इख्तियार तुम्हारे बेटे को देता हूँ और अगर नहीं जाना चाहता तो उसे छोड़ दो। हजरत जैद का वालिद और चचा, अब ये दोनों थे वहां, कहने लगे इससे ज्यादा इंसाफ की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए अमल के नुक्ते अगले के लिए डाल दें कि वो खुद फैसला करें, ये है फितरत और शरीयत। आप लोगों को थोड़ी सी बात बता के ना छोड़ दिया करें। बेटा मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद सोचिए। बेटी आप जिस चीज की इजाजत मांग रही हैं मैंने आपको उसके अच्छे बुरे बता दिए, अब आप डिसाइड कीजिए। ये जो मुसल्लत होते हैं ना, तो याद रखिए मुसल्लत जिस पे होंगे वो आपके हाथ से गया। अल्लाह के नबी से सीखिए कैसे लोगों की फितरत को छेड़ देते थे, खुद ही उनको समझ आता था। अब अगर अल्लाह के नबी कहते लाओ भाई पैसा और दो तो आप लालची होते, या कहते जाओ जाओ भाई चले जाओ मैं तुम्हें नहीं रखता, तो एक तरफ बड़ी हुई बात होती। आपने क्या किया, जिसको आप कहते हैं कि बॉल जैद की कोर्ट में डाल दी कि आप डिसाइड कर लीजिए। बाप ने कहा वाह क्या अच्छा फैसला दिया आपने। खैर वो अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बेटे के पास आए और जैद से कहा कि जैद चलो तुम्हें आजादी का परवाना मिल चुका है, हम तुम्हें लेने, और आप देखिए गुलामी के मुकाबले में आजादी तो बहुत बड़ी नेमत है। जैद को तो खुश होना चाहिए था ना, फौरन तैयारी की होगी भागू गुलामी से निकलू, ना ना, जैद का आलम ही निराला था। उन्होंने रसूलुल्लाह की कुर्बत से जो लज्जत हासिल की थी, आपके अदीम नजर अखलाक और शफकत और रहमत से फैजयाब हुए थे, इसकी बिना पर कहने लगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों ही में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इनकी गुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। जैद का ये जवाब इसके वालिद और चचा के लिए नाकाबिले यकीन था। वो नाराज़ हुए और कहने लगे, जैद तुम्हारा नास हो, तुम गुलामी को आज़ादी पर तरजीह दे रहे हो, अपने वालिद चचा अपने ख़ानदान पर मोहम्मद को फौकियत दे रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा आप सब भी जैद का जवाब सुनिए। कहने लगे, हाँ ये गुलामी तो है, मगर देखो तो सही कि है किसकी। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मोहब्बत, उल्फत, प्यार और आपके अखलाक की जो खूबियाँ देखी हैं, इसके बाद मैं इनकी ज़ात बबरकत पर किसी दूसरे को तरजीह नहीं दे सकता, चाहे वो मेरा बाप ही हो या मेरा चचा हो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं रहूंगा। माजरत के साथ एक दुखी जुमला बोलूं, ये पॉकेट मनी का फिक्र ना होता तुम्हारे तो अपने कई बच्चे भी हमारे साथ ना रहते, और ये तभी तक लगे हुए जब तक इनको आपसे अभी पढ़ने पढ़ाने के फीसों के पैसे लेने। हम कई दफा अपने बच्चों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। अब जैद के वालिद और चचा मायूस होकर मक्का मुकरमा से वापस चल दिए। अल्लाह के नबी को भी जैद के जवाब की इत्तला मिल गई। अब जैद के इस फैसले से इस कदर मुतमईन और मसरूर हुए कि इसको हमराह लेकर बैतुल्ला शरीफ में पहुंचे। वो जैद को एक एजाज और तोहफा दे रहे थे। बैतुल्ला में कुरैश के अकाबिर बैठे थे। आप लोगों से मुखातिब हुए, जैद का हाथ आपके हाथ मुबारक में था। इरशाद फरमाया, आज से जैद मेरा गुलाम नहीं, मेरा बेटा है। देखिए जैद को फायदा ही हुआ ना, गुलामी तो फिर भी खत्म हो गई। मक्का मुकरमा वाले जैद को रश्क और हैरत से देख रहे हैं, वो सादिक और अमीन का बेटा बन गया। अब से भी लोगों ने जैद को जैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। फिर जब तक अल्लाह ने रोक ना लिया सूरत अलासाब की आयतों में, तब तक उनको जैद बिन मोहम्मद ही कहा जाने लगा। ये सही बुखारी का वाक्य 4782। यानी ये वो चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की थी। क्या ये आपको मुझे सोचने पे मजबूर नहीं करी? और अल्लाह ने जो बात कही कि वइन्नकल अला खुलुकिन अज़ीम, आज मुझे अल्लाह के नबी के इस अखलाक में से कितना हिस्सा मिला। ये दौरे कुरान तो खत्म हो जाना है, मैं हैरान हूँ कि 10वां पारा आने वाला, सिर्फ एक पारा रह गया और 1/3 कुरान पूरा। पता लगा आपको, पलक झपकते में नहीं खत्म हो गया। लेकिन इसका असर, इसको मेरे आपके अंदर क्या आएगा? और याद रखिए, तारीफ वो जो बेगाने करें। एक शायर जो मुसलमान तो नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा सुनिए। किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तकनतु, अख्तर किसी ने कान में, और दिल को सर बसर महवे तमन्ना कर दिया। आदमियत का गरज सामान मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आपको मुझे तो फिक्र होगी इस बात की कि कल क्यामत के दिन क्या अल्लाह के नबी के ये हकूक हम अदा करने वालों में होंगे, या हम आपकी हकूक की पामाली वाले होंगे। हर एक अपने आप को पूछे, दूसरों को ना देखा करें, दुआ कर दिया करें अल्लाह दूसरों का हाल अच्छा रखना। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र जिस इंसान की आप करें, वो मैं खुद हूँ। अब आगे सुनिए, ऐसे ही लोगों को अल्लाह के नबी का पैगाम, इसको लिखिए यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत नबी कायनात। कैसे? कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। आप कह दीजिए, कह लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, जिसकी बादशाही तमाम आसमानों पर और जमीन में है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। बस तुम ईमान लाओ इसके नबी उम्मी पर, जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और इनकी पैरवी करो ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और कौमे मूसा में से एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। ये लिख लीजिए, एक ही लाठी से सबको नहीं हांका। अच्छे लोगों की खूबी भी जाहिर कीजिए, अगर आपको उनमें कोई बुराई दिखती है तो। बुरे लोगों में कोई एक अच्छा है तो उस अच्छे का तस्करा भी कीजिए, और यही बात इंसाफ वाली होती है। फितरत का भी यही तकाजा है कि लोग आपकी खूबियों को एडमायर करें तो फिर आपकी खामियों का भी हक अदा करें। और किसी की भी तरबियत करनी हो तो उसके अंदर पहले खूबियों को ढूंढिए, फिर उसकी खामियों को लेकर आए। अब आके बनी इसराइल के 12 कबीले कैसे हो गए उसका तस्करा है। उमामा, और हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया और हमने इन पर अबर का साया फगन किया और इनको मनो सलवा पहुंचाई, यानी वही जो दो अल्लाह की तरफ से खाने इनको मिले थे। खाओ नफीस चीजों से जो कि हमने तुमको दी है, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान कर रहे थे। ये भी नोट कीजिए, जब बंदा अल्लाह की नाशुक्री करता है ना तो वो अल्लाह का नहीं अपना नुकसान करता है। और जब इनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रग़बत करो, और जुबान से ये कहते जाना कि तौबा है, और झुके झुके दरवाजे में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। क्या पता चला कि इंसान को जब फतह मिले तो आजिज़ हो, कोई तारीफ हो तो और ज्यादा अपना मुहासबा करे। जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद बरा और देंगे। सो बदल डाले इन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ था इस कलमे की जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने इन पर एक आसमानी आफत भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया करते थे। और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का जो के दरियाए शोर के करीब आबाद थे इस वक्त का हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज इनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आती थी। जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी, यानी मछलियों को भी लगता था कि आज तो मैं किसी ने पकड़ना नहीं तो जरा मौज कर लें, लेकिन जब पकड़ने का दिन ना होता तो उस दिन कोई और कैफियत होती। हम इनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। पहली तो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ निस पूरा हुआ, और दूसरी बात यहाँ नोट कीजिएगा, वाक़ सब्त मारूफ वाक़या जो शुरू से जहनों में हमारे भी के बंदर बना दिए गए और किस तरह से क्या थे, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या था जिसमें हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सबक हैं। आइए थोड़ा सा तदब्बर करते हैं और अमल के नुक्ते लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना का मुतालिया करना है और सुन्नतों की इत्तबा करनी है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ हलाल पर इक्तफा कीजिए। अल्लाह की शरीयत को ना मानने के लिए हीला साजी करना बहुत खतरनाक है। कुरानी रहनुमाई अल्लाह ताला का तकवा और सदकात रहमत इलाही के हसूल का जरिए है। अल्लाह ताला ने जो हलाल किया वही पाकीज़ा और मुनासिब है, हराम में नुकसानात हैं। जब कोई मुसीबत आए तो अपने गुनाहों को याद करके खूब इस्तगफार करें। गौर व फिक्र की चंद बातें, दुनिया में अल्लाह की रहमत अच्छे और बुरे को समेटे हुए है, लेकिन क्यामत के दिन ये रहमत मुत्तकी और परहेजकार लोगों के लिए खास होगी। यानी आज दुनिया में सबको अल्लाह अपनी रहमत दे रहा है, काफिर को पानी भी पिला रहा है, मोमिन को कभी तकलीफ देता है कभी खुशी देता है, लेकिन आखिरत में ये मोमिनों के हिस्से में आएगी। उम्मते मोहम्मदिया की खसूसियात क्या हैं कि वो अल्लाह ताला की तमाम किताबों और रसूलों पर ईमान रखते हैं। जब बंदा नेमतों की कदर और इसका शुक्र अदा नहीं करता तो वो नेमत छीन ली जाती है। वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने इस कुरान के साथ भी ऐसे ही मामला करें। शरीयत की मना की हुई चीजों में हीले बहानों से काम लेना खतरनाक है। अब वही किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसको जरा पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह अपने लिए अमल के नुक्ते लेंगे। 164 से, वह इस कालत उम्मा, और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे रब के रूबरू उजर करने के लिए और इसलिए कि शायद वो डर जाएं। हाईलाइट करिए, किसी को भी दावत देना तो ये दो बातें जहन में रखिए, इतमामे हुज्जत यानी इस शरीयत को इनकी फितरत के ऊपर रखें ताकि शायद ये मान जाए, यानी एक तो हुज्जत तमाम और दूसरी बात है कि शायद डर जाए। कोई वक्त होता है दिल खुला होता है, किसी की बात दिल को लगती है, बंदा अमल करना शुरू हो जाता है। सो जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया गया था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे, एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, यानी बात नहीं मानते थे, यानी जिस काम से इनको मना किया था उसमें हद से निकल गए, तो हमने भी इनसे कह दिया तुम जलील बंदर बन जाओ। क्या ये मछलियां पकड़ने की वजह से बंदर बनाए गए? शराब तो नहीं बेच रहे थे, खिंजीर का गोश्त तो नहीं बेच रहे थे? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम कहते हैं कि मछलियां पकड़ने की वजह से बंदर बनाए गए। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हीला साजी, बहाने। वो जैसे कहते हैं कि यहूद औरतों के लिए भी अपने बालों को छुपाना फर्ज था, जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में, तो उनकी औरतों ने क्या किया, अपने असली बाल मुंडवा दिए, शेव करवा दिए और विग लगा ली। का देखो हमारे अपने बाल तो है नहीं, नकली बाल ही है ना, विग लगा ली। अल्लाह को ऐसी 420ियां अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, इस वाकये में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पे जो बात है ना, इसको थोड़ा सा पारे से समझिए। पारा क्या है? शरीयत वही की मुहाफिजत। अब ये तीन किस्म के गिरोह थे, एक जिन्होंने ये हिलासाजी की, दूसरे वो जिन्होंने इनको रोका, और तीसरे जो थे वो लिबरल बन के बैठ गए। डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, हम क्यों बुरे बने, सबको तो पता ही होता है। एंड रिजल्ट क्या हुआ? वो भी पकड़े गए जिन्होंने ये काम किया, और वो भी पकड़े गए जिन्होंने रोका नहीं। बच कौन गए? जिन्होंने रोका। आपके लिए मेरे लिए अमल की बात है। हतुल वसा तरीके से, बेहतरीन अंदाज से जो लोग गलत रवैया अख्तियार किए होते हैं उसमें उनको रोकिए, बताइए मोहब्बत से। और अब इसके बाद थोड़ी सी बनी इसराइल की तारीख की कुछ बातें फरमाया। और वो वक्त याद करना चाहिए जबकि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर क्यामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बिला शुबा आपका रब जल्द ही सजा दे देता है, और बिला शुबा वो वाकई बड़ी मगफरत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बस इनमें बास नेक थे और बास इनमें से और तरह के थे। हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद बास आ जाए। क्या पता चला, कभी अच्छे दिन आते कभी बुरे दिन आते। क्यों आते? लअल्लहुम यरजीउन। बाद में क्या हुआ? फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन वरिसुल किताब। ये रिश्वत लेने और किताबों को बदलने से मुतलिक बड़ी अहम आयत है, सुनिएगा। फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, वो इस दुनिया फानी का मालो मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी। हालांकि इनके पास वैसा ही मालो मता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से सिवाय हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें? और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते? ये जितने जुमले ना, फिर क्या तुम नहीं समझते, ये सब आपकी फितरत को झंझोड़ने के लिए आते हैं कि जरा गौर व फिक्र करो। और जो लोग किताब के पाबंद है और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इसलाह करें सवाब जाया नहीं करते। अल्लाह हमें अपनी इसलाह करने की तौफीक दे। और वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया, और इनको यकीन हो गया कि अब इन पर गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है इसको मजबूती से कबूल करो। यहाँ देखिए कि पहले सिर्फ मूसा अलैहि सलाम को कहा था कि इस किताब को लीजिए, अब पूरी कौम को जमा के सीगों में कह दिया, खुजू मा तैनाकुम बिकुव्वतिन वस्कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकुन। और ये जो पहाड़ को सर पे मुसल्लत किया ना, ये वही फितरत को पुकारा है। कभी कभी कुछ ऐसे अनयूजुअल वाकयात अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है कि जिसके बाद हर इंसान, चाहे वो बहुत ही बड़ा मुनकरी क्यों ना हो, सरकश क्यों ना, वो भी जान जाता है कि अल्लाह है और ये कर रहे। जैसे कोरोना के दिनों में हुआ, कोई वजह नहीं समझ आ रही, कोई इलाज नहीं समझ आ रहा, बस हर तरफ एक मौत का राज था। तो अल्लाह ताला ऐसे वाकयात के बाद कौमों को हिलाता जुलाता है, लेकिन मामला क्या है कि लोग फिर भी नहीं संभलते। दोबारा दुनिया जो है वैसी ही होने लग जाती है जैसे कि पहले थी। कुछ अरसा असर रहता है लेकिन बाद में लोग खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 172 आयत का नंबर नोट कीजिए, ये बहुत अहम आयत है। वादे अलस्त, आपकी मेरी रूह ने हमारे रब से क्या वादा किया? वैस अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, और जब आपके रब ने औलादे आदम की पुश से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सबने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल में हुए। सुखे इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डालेगा, और हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाएं। यहाँ फिर फितरत और शरीयत का जरा सा मुकाबला कीजिए। हमें पता भी नहीं था, हमें होश भी नहीं थे, हम रूहें थी। अल्लाह ने हमारे डाटा में, आज की जुबान में डाटा एक करेंसी है, हमारे कंप्यूटर के डाटा में हम कोई चीज डाल दें तो बाद में उससे फायदा उठाते हैं। आप ऑफिस का कोई भी वर्जन डाल दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप पावर पॉइंट खोल लें, पीडीएफ खोल लें, ABCDC, कुछ चीज डाली ना हो वो खुलती नहीं। आप जूम का लिंक खोल रहे हैं तो वो पहले आपको मैसेज देता है कि जी आप जूम को पहले डाउनलोड कीजिए। ऐसे ही है ना। अब समझिए, हर बच्चा जब पैदा हुआ, आगे पढ़ेंगे हम सूरत रोम में, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा, फितरत पे पैदा हुआ हर बच्चा प्योर है। बाय बर्थ एवरी बॉडी इज मुस्लिम। बाद में जो बच्चा जिस घर में पला उन्हीं की बोली बोलता है, उर्दू बोलने वाले का बच्चा जैसे उर्दू बोलता है, इंग्लिश वाले का इंग्लिश, इसी तरह मुसलमान का बच्चा ऐसा ऐसा इस्लाम की बातें करने लगता है, हिंदू का बच्चा हिंदू धर्म की बातें करता है। लेकिन वो अंदर जो इंस्टिंक्ट थी ना, ये इस आयत से पता चलती है। हजरत ईसा बचपन में बोल उठे क्योंकि उनकी फितरत इस अहद को याद रखे हुए थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग फितरी नेक होते हैं, कुरान पढ़े ना पढ़े वो नेक होते हैं, और कहीं बुरा पढ़ के पढ़ाने लग जाते हैं तो नेक नहीं होते। तो इस वादे की बुनियाद पे कल क़यामत के दिन सारे गैर मुस्लिमों का भी हिसाब होना, यही आयत बताती है, ताकि जिनको नहीं पता, उनकी फितरत को तो पता था ना कि अल्लाह एक है। तो बहरहाल बहुत ही अहम आयत है और इतमाम हुज्जत की आयत भी है। गैर मुस्लिम बच्चे जिनको आपके बच्चे मुसलमान होने की वजह से अगर इस्लाम की दावत देते हैं तो वो कह सकते हैं कि भाई तुम क्यों मुस्लिम हो, हम हिंदू क्यों ना हो जाएं। कई बच्चों के ये सवाल जवाब माँ बाप हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं कि मामा मेरा दोस्त क्यों मुसलमान हो, मैं क्यों ना हिंदू हो जाऊं। तो ये आयत उसकी दलील है। ये आयत पूरी दुनिया के हर इंसान को मुसलमान होने की दावत दे रही है। अब आगे एक वाकया है, वो शख्स जिसने अपनी फितरत की हिफाजत ना की, अकल परस्त हो गया। तो यहाँ फितरत के साथ अकल को जोड़ेंगे। अकल बड़ी होशियार होती है। फितरतन हम सब नेक हैं, शरीयत हमारी उस नेक तबीयत की हिफाजत करती है, लेकिन अकल 400 बीसियाँ सिखाती है, होशियारियाँ सिखाती है। ऐसा ही शख्स फिर इल्म लेकर भी जाहिल रहता है, बहुत ही खतरनाक सा किरदार है। मेरे जहन में तो गुर्राता हुआ कुत्ता जहन में आ जाता है इन आयात को पढ़ते हुए। देखिएगा, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी, और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, यानी पढ़ा लिखा जाहिल कोरा चिट्टा इल्म के जंगल से निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, बस वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। जल्दी से एक अपने लिए अमल लिख लें, कभी कुरान से ताल्लुक ना तोड़े कि बहुत आ गया है, अब तो मुझे आता ही बहुत है। किसी वक्त दुश्मन आएगा, आप देखिए सेफ्टी बेल्ट घर पहुंचने तक नहीं उतारते आप, और इसी तरह से किसी एक मोड़ से गलत भटके तो पीछे जाके सबीलुल गई पे गिर जाएंगे। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते हैं, यदि बंदा थोड़ा सब्र करे ना, तो आज इल्म लेने के लिए जो आजजी और जिल्लत इख्तियार की है ना, कल यही आपको इज्जत देगी इंशाल्लाह। लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, बस इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। अगर तो इस पर हमला करे तब भी वो हाँ पे, ये इसको छोड़ दे तब भी हाँ पे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। बस आप इस हाल को बयान कीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। ये सोचने का काम दोबारा आपकी फितरत की तरफ आपको माइल करता है। और इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है, बस हिदायत पाने वाला वही है, और जिसे वो गुमराह कर दे, बस ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। अब देखते हैं, हिंदू घरों में पैदा हुए बच्चे इस्लाम कबूल कर लेते हैं और बुरे माहौल के वजह से कई मुसलमान बच्चे बिल्कुल बेदीन हो जाते हैं। तो अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इस्लाम पे जिंदा रखना और इस्लाम पे मौत देना। तदब्बुर और अमल, आयात पे अमल क्या है, ये दुआ कसरत से मांगिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिदाका मिन सखतिका व बिमुआफातिका मिन उकूबतिका। ये दुआ क्या सिखा रही है कि अल्लाह मैं पनाह में आती हूँ आपकी रजा की, आपकी पकड़ से, यानी आप मुझ पर नाराज़ हो इससे पनाह में आती हूँ कि आप मुझसे राजी हो जाएं और आप मुझे माफ़ कर दें, ना कि मेरी पकड़ करें। क्योंकि ये जो आयात है ना, इनको पढ़ते वक्त तो ज्यादा दीनदारों को फिक्र होनी चाहिए अपनी, बाकी बेचारों को तो अल्लाह किसी ना किसी तरफ से शायद उनकी नदामत की वजह से निकाल दे, लेकिन जिसको अपने इल्म का और अपने तकवा का गर्रा होने लगे ना, उसको तो कसरत से इस्तग़फार पढ़ने की जरूरत है। हर उस काम से दूर रहिए जो आपको कुरान पढ़ने से दूर कर देता है। अल्लाह के अलावा दुनिया की खातिर कुरान हिफ्ज करना या सीखना खतरनाक है। लोग कहेंगे हाफिज बन गए, माशाल्लाह क्या अच्छी इनकी ग्रामर है, क्या प्यारी तजवीद है इनकी, ये जुमले निकाल दें जिंदगी से। कुरानी रहनुमाई, कोई नसीहत करे और अल्लाह की याद दिलाए तो इसको कबूल करना है। हसूले तकवा के असबाब, कुरान का इल्म सीखना, अमल करना और फिर आगे दूसरों को पहुँचाना। दावत में सच्चे वाक़यात का जिक्र करना इसकी कामयाबी के वसीले हैं, यानी अच्छे वाक़यात बयान कर देने चाहिए। इससे एक तो सुनने वाले का दिल दिमाग साथ रहता है, प्लस अमली रहनुमाई मिलती है। गौर व फिक्र की बातें, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का मकसद कि अल्लाह उसे हिदायत और अमल की तौफीक दे दे। सिर्फ बर्रा नहीं टालना होता, नतायज भी तो लीजिए। दवा खाइए तो सेहत हो, तो तबलीग कर रहे हैं किसी को तो उसका फायदा हो कि वो बुराई छोड़ दे, ना कि और भी चिड़ में आकर गलत काम करने लगे। रहमत और अजाब का एक साथ जिक्र, ताकि लोगों के दिल खौफ और उम्मीद के बीच में रहें। अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, जानबूझकर और नदानी में किए हुए गुनाह में बहुत फर्क है, अल्लाह हमें दोनों से बचा दे। हक के मुकाबले में बाप दादा की तबाह नहीं करनी। जो अल्लाह तआला की आयात और तालीमात से निकल गया, शैतान उसके पीछे लग गया। इल्म के मुताबिक अमल ना करके बंदा असफलुस साफिलीन तक पहुंच जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अब जो अगली आयत है ना, ज़रा सा पहले रिलैक्स हो और फिर सुनिए, क्योंकि इस आयत को पढ़ने के बाद तो बंदे को अपनी फिक्र लग जाती है। कैसे? आयत 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये इससे भी ज्यादा गुमराह हैं, यही लोग गाफिल हैं। कुछ नहीं हुआ, गम पड़ गया इन आयतों को सुनकर पढ़ाकर, कहीं मैं भी तो उनमें ना हूं कि जो पैदा ही जहन्नुम के लिए किए गए। तो याद रखिए, ये अल्लाह का फैसला नहीं है, ये खबर है।